इसलिए जो विधि बनाई गई है उसके अनुसार में चलना चाहिए। तो कहते हैं कि जे जथा माम प्रबदंते ताम तथा यो भजम। एक आदमी देवता देवियों की आराधना करके सोचता है ये ऐसी मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए जब मैया का धन सब ले लूं, पिता का धन ले लूं, बहन का भाग भी ले लूं और खूब सुखी रहूं। कहे ठीक है ठीक है, तुम इसलिए मेरा भजन करता है जो जाओ तुमको नरक में, मैं भी ऐसा ही भजन करता हूं, मुझको सब आता है, ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझको नहीं आती। तू यदि बदमाशी करेगा तो ठीक है मेरे ही भजन है, किंतु मैं उसका फल क्या दूंगा, कोटि कोटि जन्म तक नरक में पीस करके तुमको वैसा दे दूंगा, इसलिए हमारे बिना दूसरा कोई पथ ही नहीं। फल देने वाला कौन है, कर्मों का कौन, गर्भोदशाई विष्णु परमात्मा के रूप में वही सब विचार करके वही फलों के देते हैं, कर्म फलदाता हैं, उनके अतिरिक्त तो कोई फल देने वाला नहीं। इसलिए जैसा उनको जिस रूप में लेंगे, अच्छा मैं ब्रह्म में समा जाना चाहता हूँ ठीक है करो, फिर चखो उसका मजा भी, मैं दूसरों को मारूंगा ठीक है मारो, मेरा बिना शक्ति के तू मार नहीं सकता, अच्छा मारो, और लाखों जन्मे में उसको जाते में पीस करके घून को जैसे पिसाई होती है गेहूं के साथ में पीस देंगे अच्छी तरह से, उसका फल भी वो देने वाले हैं। इसलिए हमारे पद को छोड़ करके और जगत में कोई पथ नहीं है। तो इस जगत में जो कर्मी ज्ञानी योगी हैं, कहते हैं कृष्ण यदि महापुरुषों का ये लक्षण है कि अपने समान जगत को बना लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं यहाँ पर कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी सभी सुन रहे हैं मेरी कथा, मैं भगवान की रसपूर्ण कथाओं को गोपियों की बातों को कैसे कहूँ, ये अनाधिकारी हैं। फिर उनके मन में क्या आया, क्या हुआ, वो महाभागवत है ना, महाभागवत में क्या शक्ति है, अपने भावों को दूसरों में संक्रमित करा दे, कोई डर की बात नहीं, वो कान आरम्भ किया और सबको ज्ञानी योगी तपस्वी सभा में जो थे सबको अपने अनुप ढाल करके रसिक बना दिया। तो भगवान ये काम नहीं कर सकते, भगवान जब आते हैं तो कर्मी योगी तपस्वी सबको क्या रसिक नहीं बना देते। इसी प्रश्न के उत्तर में ये बतलाया गया है जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भाई ये वो महाभागवत तो कर लेंगे ऐसा, मैं ऐसा नहीं करता, जे जथांग माम पर जे जैसा करते हैं मैं उसका फल उसी रूप में देता हूँ, ये मेरा स्वभाव है, स्वरूपानुबंधी ये गुण है उनका। हाँ यदि कुछ इधर उधर कराना होगा तो अर्जुन से कहेंगे प्रतिज्ञा नहीं कौनते अनमे भक्ता, तुम प्रतिज्ञा करो, भाई मेरी प्रतिज्ञा नहीं। इसलिए कृष्ण ऐसा नहीं करते, इसलिए कृष्ण ऐसी लीलाओं को प्रचार करते हैं, अपने परिकरों को ले आते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं, वो चाहे तो सबको भी मधुर रस का बना दें किंतु बनाएंगे नहीं, सबकी स्वतंत्रता को जैसा तैसा रखते हुए ठीक रखते हुए उन पर कृपा करते हैं, भक्तों के संपर्क से फिर अपनी कृपा को करते हैं। इसी चीज को समझाया गया है, अगले दिन इसको अच्छी तरह से मैं समझा करके बतलाऊंगा, आज यहीं तक रहे, रात हो रही है और अधेरी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर रखें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कोई आए हैं हीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामातितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरजा जुहव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनानतोष तवैवास्मि तवैवास्मि न जुहामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मे मां चरणं। श्री श्री चैतन्य चैतामृत आदि
चतुर्थ परिच्छेद हम लोग आरंभ करेंगे। अभी कल एकादशी गया ना, उसमें द्वादशी भी है, वामन द्वादशी पारण हो गया आज है, उसके लिए कर लिया पारण। दोनों का तो पारण आज हुआ, उनको पता नहीं है,
पता है। पारण लिखा है लेकिन
विष्णु संकल में यही है। विष्णु संकल किसको कहते हैं जानो कह, विष्णु श्रृंखल जो किसको कहते हैं, से पंडितों का समूह यहाँ पर बैठा हुआ है, निताई पंडित किसी को पूर्णा तिथि कहते हैं, किसी को अपूर्णा तिथि कहते हैं, ये चीज को समझो। जब एक सूर्योदय के पहले अरुणोदय से आरंभ करके एक घंटा 36 मिनट पहले से लेकर और सूर्य तक, सूर्य उदय तक एकादशी के लिए और दूसरी तिथियों के लिए एक सूर्य उदय से दूसरी सूर्य उदय तक ये 60 दंड यदि वो तिथि पूरी रहे तो उसको कहते हैं पूर्णा तिथि। आया समझ में? सूर्य उदय से सूर्य उदय तक कोई भी तिथि रहे तो पूरी, इसको पूर्ण कहते हैं। किंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तिथियां घट बढ़ जाती हैं, एक दिन में 3 तिथि भी आ सकती है और एक तिथि इतनी लंबी हो जाती है कि उसमें 3 दिन आ जाते हैं। आया समझ में? यहीं पर वेद होता है। वेद माने एक तिथि 3 दिनों को स्पर्श करती है, एक दिन 3 तिथियों को स्पर्श करती है, इसको अवम तिथि कहते हैं। अवम माने यह किसी काम के लिए, शुभ काम के लिए इसको वर्जित है, अवम भी कहते हैं। और एक और क्या तरस्पर्श माने एक दिन यदि 3 को स्पर्श करे, 3 तिथियों को, तो उसको तरस्पर्श कहते हैं। त्रयस्पर्श अच्छा तो ये 3 हुआ। और यदि एक दिन 3 तिथियों को स्पर्श करे वो भी तरस्पर्श ओम। हम लोग के गुरु जी ने इसमें विस्तृत विचार दिया, कौन तरस्पर्श है कौन ओम है, दोनों एक नहीं है, उन्होंने दिया है ये सब विचार। अब जब कोई एकादशी के लिए एक बात स्थिर है और सब तिथियों के लिए है सूर्य उदय से लेकर के सूर्य उदय तक रहने पर, या विशेष करके सूर्य उदय से आरंभ होने पर यदि 1 घंटा, 1/2 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा भी रहे तो वो पूर्ण तिथि रहेगी और उसी दिन व्रत करना चाहिए। किंतु कभी कभी ये तिथि बढ़ करके दूसरी तिथि में आ जाती है, जैसे अष्टमी सूर्योदय से आरंभ हुई और बढ़ करके चली गई कहाँ, नवमी में चली गई, और उस दिन रोहिणी नक्षत्र उसको मिल गया नहीं? तो उसी दिन व्रत होगा। आया समझ में कि नहीं? ये परस्पर संबंध है अष्टमी और नवमी, और रोहिणी का उसमें संबंध हो गया तो उस दिन कृष्ण का व्रत उधर में करेंगे।
सोमवार बुधवार तो ये तो
अच्छा, और बुधवार और ये मिल जाए तो वो जयंती हो जाता है। अच्छा, अब विष्णु श्रृंखल जो किसको कहते हैं ये हमको बतलाना है। एकादशी यदि बढ़ जाए अथवा न बढ़े, द्वादशी में यदि श्रवण नक्षत्र मिल जाए, द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र मिल जाए और 1 मिनट भी एकादशी से उसका पूर्व जो एकादशी है उसे मिल जाए तो इसको कहते हैं विष्णु श्रृंखल योग। श्रवण स्पिष्टा द्वादशी, द्वादशी जिसमें श्रवण लगा हुआ, श्रवणा नक्षत्र, और एकादशी को स्पर्श पहले कर ले अर्थात व्रत विहित एकादशी के दिन यदि श्रवण स्पृष्टा द्वादशी योग होती है तो वैष्णव योग विष्णु श्रृंखल के नाम से ये कथित होता है। उस दिन एकादशी को छोड़ करके विष्णु श्रृंखल युक्त द्वादशी को करना ही उचित है। पूर्व एकादशी को छोड़ देते हैं, एकादशी यदि पूर्णा भी रहे अरुणोदय से भी रहे किंतु जिस दिन श्रवणा नक्षत्र से योग हो और एकादशी का भी थोड़ा सा स्पर्श हो जाए तब इसको विष्णु श्रृंखल योग कहते हैं। एकादशी को छोड़ करके द्वादशी का व्रत करना चाहिए। मनुष्य इस दिन यथाविधि उपवास करने से समस्त पापों से विनिर्मुक्त होकर के पुनर्वास संसार में आगमन नहीं करता, अतएव अति उत्तम सिद्धि प्राप्त इसके द्वारा हो जाता है। एकादशी शब्द से ही आइए समझो, अहोरात्र एकादशी समझना चाहिए। पूर्व पहले दिन रात 24 घंटा एकादशी है करके और बढ़ गई और बढ़ गई और द्वादशी से मिल गई ऐसा समझो। अर्थात एकादशी अल्प परिमाणे था के लिए भी थोड़ा सा भी दूसरे दिन रहे अष्ट प्रहर बोलिया अभित है तो उसको भी अष्ट प्रहर ही समझना चाहिए। थोड़ी सी भी रहे तो, क्योंकि पहले दिन वो अष्ट प्रहर है, ऐसा नहीं कहने से एकादशी में द्वादशी स्पर्श नित्य ही विद्यमान है। यदि ऐसा नहीं कहते कौन सी एकादशी है जिसमें द्वादशी मिली हुई नहीं है, कभी न कभी तो जरूर मिलती है, इधर मिले उधर मिले जब मिले अंत में तो मिलेगी ही। इसलिए अहोरात्र हो करके दूसरे दिन बढ़ जाती है और द्वादशी को स्पर्श करती है उस दिन श्रवणा नक्षत्र हो इसको कहते हैं, इसलिए द्वादशी का महत्व है। ये सब समझना चाहिए वैष्णव को, इसलिए बतलाया और फिर भूल मत जाना, नहीं तो कोई पूछ देगा जब विष्णु श्रृंखल जी को उसको कहते हैं तो तुम लोग आकाश पाताल देखे। तो कल था, कल भी हम लोगों ने बामन जी के लिए भी उपवास किया। कल हम लोग एकादशी के कीर्तन में रह गए और थोड़ा सा चैतन्य चैतन्य पाठ किया, इसलिए बामन जी के संबंध में हम लोग नहीं बतला सकते। बामन जी बलि महाराज जी के राज्यसभा में बलि को छलने आए, देवताओं को छल करके दिया राज्य और इनको छल करके क्या दिया, प्रेमा भक्ति। तो विष्णु ने छल कहाँ किया विचारो, लोग कहते हैं कि विष्णु ने छल कपट करके बलि महाराज जी को रसातल कहाँ पात सुतल में पठा भेज दिया और देवताओं को उनसे राज्य लेकर के देवताओं को दे दिया। यदि कोई व्यक्ति या भगवान ही स्वयं हम लोगों का श्री भ्रष्ट कर दें, तब खूब सुंदर परिवार है, सुंदर स्त्री है, सुंदर सुंदर लड़के हैं, बड़े योग्य लड़के हैं और इंद्र जैसा ऐश्वर्य है और भगवान ने हमको उनसे हटा करके स्त्री हमसे बिगड़ गई, बच्चे बिगड़ गए और डकैतों ने हमारा सर्वस्व लूट लिया, या भाई ने वो हमारा सब कुछ ले लिया, या पिता ने हमारा हिस्सा नहीं दे करके अलग कर दिया और स्त्री भी विरोधी बन गई और वो व्यक्ति किसी कारण से किसी सच्चे वैष्णव के पास में आ गया और वो एकांतिक मन से आत्मसमर्पण करके भगवान का भजन करता हुआ रागा अनुगा भक्ति में उसको लोभ थोड़ा सा दिला दिया। अच्छा तो भगवान ने उसको वंचित किया है ना अधिक प्रीति किया, तो लोगों के समझ में नहीं आया, यही चीज हुई वहाँ। बामन जी इतने बड़े दयालु हैं, कृष्ण ही तो हैं ना, इसलिए दया करके जिस चीज में देवताओं और असुरों में झगड़ा लग रहा था संपत्ति के लिए, त्रिलोक की संपत्ति हमारे अधिकार में रहे, राज्य हमारे अधिकार में रहे और लड़ रहे थे, भगवान ने उनसे देखा जाए युद्ध में तो ये लोग टिकेंगे नहीं और हमको भी युद्ध में नहीं चलना चाहिए, छल बल से हमको ये काम करना है। वो वहाँ गए और जा करके उनसे भिक्ष मांग ली और सब असुर लोग उन पर क्रोधित हो गए, देखो तो ऐसा निष्ठुर कपटी धूर्त जो इनका समस्त ऐश्वर्य ले लिया और उनको सुतल में दे दिया, ये काम बहुत ही खराब मालूम होता है ऊपर से, किंतु दिया क्या। प्रहलाद महाराज जी को कहा जी आप भी सुतल में इसी के साथ में रहिए, मैं भी वहीं पर रहूँगा, और अपनी सेवा का सुयोग उनको दे दिया। बतलाओ तो ऐसा कौन दयालु होगा, हैगा कोई ऐसा दयालु? किंतु लोग के दिमाग में पत्थर भरा पड़ा है, कोई भूसा भरा पड़ा, वो चीज़ को नहीं समझते। संसार में सबसे बढ़ करके क्या चीज़ है इसमें, यदि किसी को वैष्णवों का संग हो, उसमें भी ब्रज में वास करने का समय मिला सुयोग, और उसमें शुद्ध रसिक वैष्णवों का संग मिला, और उसके साथ में कृष्ण की भक्ति का आलोचना वो कर रहा है, इसे बढ़ करके तीनों लोक में कोई भी फल उसके बराबर है, राज्य इत्यादि सब कोई चीज़, यही चीज़ उनको दे दिया। प्रहलाद महाराज जैसे परम भागवत का संग दिया और खुद वहाँ रह करके और उनको अपनी सेवा का सुयोग दिया। इसलिए भगवान को जो कहेगा ठग वंचक छल करके ऐसा लिया नहीं, बल्कि उनको ऐसी चीज दी जिसकी कोई तुलना नहीं, ऐसी चीज दे करके जगत के लोगों को ये समझ में, ये है बामन देव जी की विशेष कृपा। उसके लिए ब्राह्मण का वेश बनाया, भिक्षा मांगे, सब कुछ किया, किंतु तो उसको प्रेम, यही भगवान की दयालुता है। परम करुण रसिक से खर कृष्ण परम परम करुणा में, किंतु इसमें भी उनकी पूरी करुणा नहीं है, पूरी करुणा नहीं, उनकी पूरी करुणा कहाँ है, ब्रज के अतिरिक्त और उनकी करुणा कहीं भी प्रकाशित नहीं होती। वो पूरी करुणा ब्रज में ही उनकी करुणा बरसती है। इसलिए हम लोग कल के लिए आज ही विश्व शंखल जो के लिए और बामन देव जी के लिए आज उनके चरणों में हम पुष्पांजलि हम देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे ऊपर में भी करुणा करें। कैसी करुणा? जैसे आपने जिस मूड से जिस भाव से कली महाराज पर कृपा की, उनका सर्वस्व अपहरण कर लिया, उनके जितने भी शरीर में राज्य में पुत्र परिवार में जो कुछ भी आसक्ति थी उसको ग्रहण करके आपने विशुद्ध उनको प्रेम दिया। बलिर सर्वस्वात्म भूत
नहीं,
सर्वस्व उनके चरणों में निवेदन कर दिया, ये कम बात नहीं है। आप जैसा कहेंगे वैसा चल, ऐसे हुआ बिना भक्ति नहीं हो, दे दिया उनको अपनी प्रेमा भक्ति दिया, विशुद्ध प्रेम दिया। तो अभी कौन सा विशुद्ध प्रेम दिया? ऐश्वर्यमयी, बस इतना ही, और भी दिया। तुमको बहुत दुख हुआ ना पहले, नहीं बामन बलि महाराज जी नहीं समझ सके, भगवान देख रहे हैं जैसे इनको बहुत दुख हुआ और रोने लगे, जब बांध करके नागपाश में उनको फेंक दिया और प्रहलाद महाराज आए तो ये रोने लगे। भगवान चुपचाप निष्ठुर जैसे खड़े हैं, प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा जी कहते हैं अरे देखो आपके नाम लेने से लोग सब भवबंधन काट करके ऊपर में चले जाते हैं और आपने नागपार से इसको बांध करके डाल दिया, कैसे आप निष्ठुर है? तो ये रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? आज मैं कैसे असहाय बंधा हुआ हूँ। किंतु सचमुच ये बात ठीक है, नहीं बात ठीक है पहले, जीव नहीं समझता है इस चीज को, नहीं समझता है भगवान की कृपा को। भगवान उनके समस्त बंधनों को काट रहे हैं, अपने प्रेम में उनको लाना चाहते हैं, पहले नहीं समझ सके इसलिए रो रहे थे। अच्छा तुमको बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ ना, और तुम्हारे जितने परिजन हैं इसके लिए बड़े दुखी हैं। अच्छा एक बात करो, मैं इसके बाद वाला जो आएगा ना मनमंत्र, उसमें तुमको इंद्र का पद दे करके तुम भोग करना, और इसके बाद में तुम जब समझ लेगा जे इसकी कितनी हेयता है, अनुपदेयता है, कितनी ये बुरी चीज है, तुम खुद इसकी उपलब्धि करोगे और उस समय में कहोगे प्रभु अब नहीं चाहिए ये सब। ऐसे दयालु, किंतु थोड़ी सी दया उसी समय में उनको रियलाइज करा देते ना, और ये इंद्रपद नहीं देते तो और अच्छा होता। किंतु प्रभु का ऐसा स्वभाव है, इसी स्वभाव का हम लोग चैतन्य चैतामित में वर्णन है, जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। उसको उसी रूप में उसका भजन करता हूँ, उसको सब कुछ उसी को उस रूप में देता हूँ। जैसे यदि कोई कर्मी है, कोई ज्ञानी है, कोई कर्म मिश्रा भक्त है, कोई ज्ञान मिश्रा भक्त है, कोई मुक्ति चाहता है, कोई धन संपत्ति, कोई स्वर्ग, कोई मुक्ति, चारों में से एक या और चाहता है, भगवान क्या करेंगे? ठीक है लो, तुम्हारा भक्तों के साथ में अभी भी चित्त शुद्ध नहीं हुआ, भक्तों का संग दिया ना, और तुमने इसका अनुकूल फायदा नहीं उठाया, तो लो भोग करो, नहीं देंगे उसको प्रेम, क्योंकि ये स्वरूपानुबंधी उनका गुण है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ये स्वरूपानुबंधी गुण है, इसीलिए वो इसको बतला रहे। अब चलिए हम लोग चैतन्य चैतामृत में चले। त प्रेम रस निज्यास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति रोगे करिते प्रचारण रसिक शेखर कृष्ण परम करुण यही दुई हेतु हैते इच्छा और उद्गम। उनकी इच्छाएं किस लिए होती हैं? इच्छा हुई राजपंचाध्यायी में पहला श्लोक, पहला श्लोक 29 अध्याय का, भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका दीक्षम रंतुम मनश्चक्रे योगमायासम। रंतुम मनश्चक्रे, मन के द्वारा विचार किया, आज रमण करना है, रास करना है, क्यों किया? मनश्चक्रे क्यों? रसिक शेखर है ना और परम करुण है, इसका उद्देश्य यही था। परम रसिक है, रसिक माने क्या होता है? रसिक उसको कहते हैं लोलू, लोलू माने रस का लोलू। यदि देखा एक मदिरा पान करने वाला पॉकेट में पैसा नहीं है और दुकान से जा रहा है और देखा जे 10 पियक्कड़ लेकर के और पी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उसको उद्दीपना होती है, तो वो क्या करता है? वो पास में बैठ जाता है, वो कुल्लर टुल्लर फेंक देते होंगे तो उठा करके केवल चाटता है क्या करेगा, पैसा तो है नहीं और लोलुप है, उसको लज्जा नहीं है, जिसको कुत्ते भी चाट गए हैं और इधर में फेंका हुआ है, अपवित्र है, उसको ज्ञान नहीं होता, यह है लोलुप। बुद्धि टुद्धि कुछ नहीं रहती, बुद्धि का उस समय काम नहीं होता, इसका ये नहीं, उस समय बस ये रहता है, लोलुप होता है। तो कृष्ण बड़े रस लोलुप है, इसलिए उनके इच्छा उद्गम हुई गोपियों को उन्होंने आवाहन किया, कैसे? बेड़ुन गीत के क्लिंग शब्द से आवाहन किया। गोपियों को गरज है ना, कृष्ण की गरज है, जिनका गरज है वो बुला रहे हैं, वो उनके बिना रह नहीं सकते, प्यासे हैं, भूखे हैं, इसलिए उनको बुलाया, कृष्ण ने बुलाया, गोपियों ने नहीं बुलाया। हाँ गोपियां चिंता तो कर रही है, बात तो ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण रसस्वरूप हैं, जिनको जगत के लोग जिसका रसपान करते हैं, कृष्ण को देख करके ही आनंद लोगों को होता है, कृष्ण की बोली सुन करके आनंद होता है, कृष्ण की चलन देख करके मोद होता है। मधुरम मधुरम विपोर मधुरम मधुरम, उनकी लकुटी मधुरा, मथुरा मधुरा, ब्रज भी मधुरा, चलनी बोलनी हंसनी सभी कुछ उनकी मधुर, मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुरम मधुरम, सभी उनका मधुर है। मधुराधिपते, मधुरा मैंने मथुरा ही मत समझना, मधुर यह सारा ब्रज ही वृंदावन। इसलिए रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यद्यपि ये दोनों गुण स्वरूपानुबंधी हैं। स्वरूपानुबंधी किसको कहते हैं? स्वरूप से संबंधित है, स्वरूप में है। जैसे पानी से तरलता कभी नहीं निकाला जा सकता, कभी नहीं। सूर्य से आतप रहित सूरज नहीं जाए, सूर्य से उसकी गर्मी जो है वो अलग नहीं की जा सकती, ताप दूर नहीं किया जा सकता। उसी तरह से कृष्ण से ये दोनों को स्वरूप से संबंधित हैं, परम करुण भी हैं और रसिक शेखर। इसी से उनकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं सब इसी के रसिक शेखर हैं। इसलिए सोचते हैं कि इसका बूंद जीवों को एक बूंद एक छींटा भी कहीं से मिल जाए, उनके अंदर में इसका लोभ उत्पन्न करना है, ये उनकी परम करुणा है। देना ये गुण का गुण है और रसिक शेखरत्व ये कृष्ण का स्वरूप है। और उनके इस स्वरूपानुबंधी में जितने भी गुण हैं उन समस्त गुणों में चक्रवर्ती है परम करुणता, है ना। ऐश्वर्य गाने ते सब जगत मिश्रित, समस्त जगत ये जगत अब कह रहे हैं ऐश्वर्य मिश्रित है, ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त है। माने क्या? भक्त भी हैं इस जगत में, भक्तों के लिए यहां पर कह रहे हैं। ये इस जगत में जो चोर चोटे बदमाश डकैत ये सब ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त हैं, नहीं इनके लिए नहीं कहा गया। भक्ति में भी जो हैं बहुत उन्नत भी भक्त में इस जगत में रहने वाले वो सभी ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित हैं। जैसे अच्छा ऐश्वर्य शिथिल मोर नहीं मोर प्रीत, किंतु ऐश्वर्य से मिले हुए शिथिल प्रेम में मुझे प्रीति नहीं। शिथिल किसको कहते हैं? शिथिल माने उत्साहजनक नहीं है, शिथिल ढीला ढीला है, ढीले ढीले प्रेम के द्वारा मेरी प्रीति नहीं है। और उधर कहते हैं ये जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथव्यो भजाम मैं हम ममो वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, मनुष्या पार्थ सर्वशः मम अनुवर्त मम वर्तमान अनुवर्तते। माने क्या? जितने मनुष्य हैं सर्वशः सब प्रकार से मम वर्त मेरे पथ में मेरे लिए जो रास्ता प्राप्त कराता है उस प्राप्ति के मार्ग में सभी लगे हैं जितने मनुष्य हैं। तो जो कर्म करके देवता इंद्र की पूजा करते हैं वो भी उनके मार्ग में हैं, जो लोग भूत पिशाचों की भी पूजा करते हैं वो उन्हीं की पूजा है, ग्रहों की जो पूजा करते हैं, पितृपुरुषों की जो पूजा करते हैं, जो नारायण की पूजा करते हैं वहां तक तो अविधि पूर्वक, कहां तक? देवता और ये सब। किंतु अब उसे ऊपर उठिए तो भगवान के जो स्वरूप हैं उनके अंश स्वांश वैभव चतुर्व्यूह यहाँ तक कि तीनों पुरुषावतार शेष यहाँ तक ये सब हैं, इनकी भी यदि कोई पूजा करता है बराह देव की बामन देव की तो कृष्ण कहते हैं मेरी ही पूजा है। मनुष्य यक्ष भूत पिशाच इत्यादि और देवता इत्यादि पूजा के लिए बतला रहे हैं ये मेरी ही पूजा है। किंतु क्यों? इसलिए कि पूजा का फल देने वाला कौन है? कृष्ण ही अपने गर्भोदशाई रूप में क्षीरोदशाई रूप में कर्म फलों के नियंता के। इसलिए वो कहते हैं ये जितनी भी लोग पूजा में स्थित हैं जैसे भी कर रहे हैं वो मेरी ही पूजा है। किंतु कुछ पूजाएं अविधि पूर्वक हैं कुछ विधि पूर्वक हैं किंतु मेरी ही पूजा है। तो कृष्ण तो परम करुण है, कृष्ण चाहे तो उसके उन भावों को पलट सकते हैं कि नहीं, एक क्षण में पलट देंगे किंतु पलटते नहीं हैं। शांत सब तो हमारे ही हो रहा है, मेरे ही अंदर में आ रहा है, इसलिए वो पलटते नहीं। ऐश्वर्य ज्ञानेते सब जगत मिश्री, मैं यहाँ पर जाऊँगा जगत में रसास्वादन करने के लिए, किंतु रसास्वादन किसके साथ होता है? जो घनिष्ठ होता है, एक समजातीय होता है। तो मैं तो रसिक शेखर हूँ, तो यदि कोई रसिक नहीं होगा तो उसके साथ में हमारी लीलाएं होंगी, आस्वादन करेगा, इसलिए अंततः उसको रसिक होना पड़ेगा। मैं रसिक शेखर हूँ, सब रसिकों में से अंततः रसिक होना चाहिए, भावुक होना चाहिए। तो जगत तो ऐसा रसिक है नहीं, अर्थात यहाँ के जो भक्त हैं, जो मेरी पूजा करते हैं या किसी प्रकार से पूजा करते हैं, ये रसिक नहीं है, भावुक नहीं है, सब ऐश्वर्य ज्ञानेते जगत मिश्री। रामानुजाचार्य आए, शंकराचार्य आए, उन्होंने कहा जे भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है, फिर वो दयालु कहाँ से रहेंगे? दयालुता भी गुण नहीं है। निराकार निरंजन निर्विशेष अनादि अव्यक्त, जितना उसमें है अ वाला, वो सब प्रत्यय उसमें लगा दिया।